बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 29 जुलाई, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पिछली बार आरजेडी के सहयोग से, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उप मुख्यमंत्री बदल गए। तेजस्वी की जगह अब सुशील मोदी हैं। आरजेडी का दामन छोड़ा, बीजेपी का थामा। बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था, पर नीतीश कुमार ने इस गठजोड़ को तोड़ दिया। सवाल ये है कि क्या बिहार में जनादेश का सम्मान हुआ? क्या उन्हें बीजेपी से हाथ मिलाने के बजाय नए चुनाव करवाने चाहिए थे? कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811 7000। लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी ने पूर्व पेट्रोलियम मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अंतरिम प्रधानमंत्री अब्बासी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जब नेशनल असेंबली का चुनाव जीत जाएंगे तब वे उनके लिए कुर्सी खाली कर देंगे और इस तरह शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, जो इस वक्त पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। श्रीलंका ने अपने दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा के विकास के लिए चीन के साथ $1 का समझौता किया है। इस समझौते में कई महीनों की देरी हुई है क्योंकि स्थानीय लोगों को चिंता है कि चीन इसका इस्तेमाल सैन्य तरीके पर कर सकता है। इसके विरोध में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने भरोसा दिलाया कि चीन केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। श्रीलंका में बंदरगाह से संबंधित मामलों के मंत्री महिंदा समरसिंघे का कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते पर दस्तखत के साथ ही हमारी सरकार निवेश लाने में सफल हुई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बहुत मजबूती मिलेगी। ये थे श्रीलंका के मंत्री महिंदा समरसिंघे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नवीनतम प्रक्षेपण के बाद ये साबित हो गया है कि वो अमेरिका में किसी भी जगह को किसी भी समय निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन पर एक न्यूज रीडर ने कहा, सर्वोच्च नेता ने बड़े गर्व के साथ कहा है कि हमारी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली की दोबारा पुष्टि हुई है। इससे ये साबित हो गया है कि हम अमेरिका में कभी भी किसी भी समय हमला कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी विशेषज्ञों ने मिसाइल लॉन्चिंग से संबंधित जानकारी का विश्लेषण करने के बाद इस बात पर सहमति जताई है कि अमेरिका के ज्यादातर शहर उत्तर कोरिया की मिसाइलों के दायरे में हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर बहलाने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में एक शिकायत के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा,
अपोजिशन के एमएलएज, कांग्रेस के एमएलएज, उनको पैसे की लालच दी जा रही है, उनको टिकट की लालच दी जा रही है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि हमें बहुत खेद है कि इस तरह की घटनाएं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेट में ही, होम स्टेट में ही, रूलिंग पार्टी ही खुद चोरी करे और अपोजिशन के एमएलएज को भगा ले तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोस की बात लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए नहीं हो सकती।
ये थे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद। उधर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बिहार के राज्यपाल ने नीतीश मंत्रिमंडल में 26 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से 13 और जनता दल यूनाइटेड से भी 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार मैं आपके लिए फिर से दोहरा देता हूं, टोल फ्री नंबर है 1811 7000। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार, कार्यक्रम में शामिल होंगे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता, साथ में आप श्रोता भी शामिल हैं। विषय एक बार जो लोग जिन्होंने रेडियो सेट को अभी अभी खोला है उनके लिए फिर से दोहरा देता हूं कि क्या बिहार में जनादेश का सम्मान हुआ? क्या नीतीश को बीजेपी से हाथ मिलाने के बजाय नए चुनाव करवाने चाहिए थे? सबसे पहले टिप्पणी मुकेश जी मैं आप ही से लेना चाहता हूं कि ये जो गड़बड़ झाला है क्या कहेंगे?
देखिए, इस मामले में कोई दो मत हो ही नहीं सकता कि जनादेश का सम्मान नहीं हुआ है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में गए थे, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था और मतदाताओं ने जिस आधार पर आपको चुना था, अगर उस आधार को छोड़कर, उन मुद्दों को छोड़कर आप उसके विरोधी पक्ष के से जाकर जा मिलते हैं, तो जाहिर है कि जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है, आप जनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है। अब उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी अपनी अपनी तरह से उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो जनादेश जिस आधार पर मिला था उसका सम्मान नहीं हुआ है।
एक फेसबुक की एक टिप्पणी मैं आप ही ने जो बात कही उस पर लेना चाहता हूँ। ब्रजेश कुमार हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान है, तो लालू अपने पूरे परिवार को राज्यसभा में भेज रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है?
देखिए, ये दूसरा सवाल है। अगर आप इन दोनों को साथ रखकर बात करना चाहेंगे तो फिर एक दूसरी तरफ बात चली जाएगी, लेकिन अगर आप जनादेश की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका अपमान हुआ है। लालू यादव क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था, तेजस्वी यादव उसका इस्तीफा दिलवाना चाहिए था, ये एक अलग मसला है। तो जो पाप नीतीश कुमार ने किया है वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो लालू यादव ने किया है वो उसके लिए जिम्मेदार है। जाहिर है जो कुनबा की राजनीति हो रही है उसे कोई उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।
सीधे कार्यक्रम में हम आपको बिहार ले चल रहे हैं जहां से हमारे सहयोगी नीरज सहाय मौजूद हैं। नीरज, आज नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अपने सहयोगी मंत्रियों को शपथ दिला दी। आपसे ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि वो सड़कों पर उतरेगी, बड़े प्रदर्शन भी हुए और कहा कि ये जनादेश का अपमान है, उन्होंने आरजेडी के साथ समझौता किया था, महागठबंधन टूट गया, इसका ठीकरा उन्होंने लालू प्रसाद मतलब ये जो लड़ाई है, तो ये क्या सड़कों पर लड़ाई चल रही है, ये हो क्या रहा है बिहार में? जी नीरज, आपको आवाज आ रही है?
हाँ सर, आ रही है
जी। मैंने आपसे पूछा है कि बिहार में चल क्या रहा है?
बिहार में फिलहाल देखिए राजनीति जो है वो थोड़ी गरमाई हुई है, लेकिन यहाँ पर कल जो विश्वासमत हासिल कर लिया नीतीश कुमार की नई सरकार ने, उसके बाद विश्वासमत के दौरान ही राजद ने महागठबंधन सरकार पर यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने जनादेश का पालन नहीं किया है। जो जनादेश उन्हें 5 साल के लिए सरकार चलाने को मिला था उसके साथ उन्होंने धोखा किया है, ये राष्ट्रीय जनता दल का आरोप था। कल खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाया था। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये जनादेश सांप्रदायिकता के खिलाफ मिला था। खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि हम संघ मुक्त भारत चाहते हैं, उस तो इस आधार पर राजद का ये आरोप रहा है।
आपके साथ वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं हम जानते हैं, उनकी क्या राय है, वो कैसे देख रहे हैं कि ये क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के बजाय चुनाव में जाना चाहिए था?
हम अभी बात करते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बजाय उन्हें मध्यावधि चुनाव में जाना चाहिए था? क्या यह जो स्टेप कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाया है, क्या यह जनादेश के साथ धोखा करने जैसा नहीं है?
ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सात्विक तरीके से सरकार चला रहे थे, और जब उप मुख्यमंत्री जी पर चार सिटेड हो गए, FIR हो गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे तेज उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि साहब आप जनता के सामने जाकर के और बिंदु बार इसका जवाब दे दें। बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने समझाया अपने कक्ष में मुख्यमंत्री जी ने, और आशा रखे कि इन्होंने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आप तो जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस जब हमारी नीति है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में उन्होंने इस पर बहुत ही ढंग से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिया। हेलो
जी हाँ जी हाँ जी हाँ सुन रहे हैं, उनसे कहिए जरा संक्षेप में अपनी बात रख दे
जी।
जी हाँ हम आपकी बात समझ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सहाय आपका, और इनकी आवाज़ हम सुन रहे थे और बीच में कुछ थोड़ा सा व्यवधान भी पैदा हुआ। ये जो कह रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे तमाम फेसबुक पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं लोग कि भाई देखिए, सत्ता पर आने का मौका तो जिसको मिलता है वो सत्ता की चाबी ले ही लेता है, इसमें नीतीश ने क्या गलत किया?
अगर बात केवल सत्ता की राजनीति की है तो फिर जनादेश का प्रश्न भी बेमानी हो जाता है। राजनीति में जो हम लोग कहते हैं,
लेकिन भारत की राजनीति में ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब चुनाव किसी के साथ लड़े और उसके बाद किसी के साथ सरकार बनाई, ऐसा पहली बार
ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा नैतिकता की बात करते रहे हैं, राजनीति में आदर्शों की बात करते रहे हैं, अपनी छवि उन्होंने इस तरह से गढ़ी है कि वो एक साफ सुथरी राजनीति के हिमायती हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठ रहा है। अदरवाइज अगर बाकी राज्यों में होता रहा है तो हुआ है, जनादेश का अपहरण हुआ है। जनादेश
प्रश्न तो उस समय भी उठा था जब लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, नैतिकता का सवाल तो उस समय भी बहुत बड़ा था। जी हमारे बहुत सारे जो फेसबुक पर लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उसमें महक फातिमा है, इन्होंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स। रहमान खान है, इन्होंने कुर्सी कुमार नीतीश कुमार के लिए कहा है। इसके अलावा भारती हैं, ददो भारती हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जो कभी राजनीति में शुचिता के लिए जाने जाते थे अब वो क्षुद्रता के लिए पहचाने जाते हैं। बहुत सारी टिप्पणियाँ इस समय जो इस फेसबुक लाइव पर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लगातार आपकी टिप्पणियाँ आ रही हैं। नीरज सहाय के पास एक बार हम फिर से चल रहे हैं। नीरज, हम आपसे बात कर रहे थे और एक हमने वहाँ पर जो लोग मौजूद थे हमने उनकी भी बात सुनी। आप ये बताइए कि इस समय जो पटना की गलियाँ हैं वहाँ पर क्या माहौल है, क्या दोनों धड़े एकदम आमने सामने हैं या नहीं है, बहुत संक्षेप में?
देखिए मोहनलाल जी, पटना में या यूं कहें इन पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो जो भी प्रतिक्रिया है नीतीश कुमार के समर्थन में, लालू यादव के समर्थन में, तेजस्वी यादव के समर्थन में या इन सबों के विरोध में, तो वो सब कुछ जाति आधारित है। और इसी पर आप इसकी गणना कर सकते हैं। ये जो मत है ये विभाजित है, कुछ इसे इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन है, ऐसी कोई बात नहीं अभी तक देखने को आई है। कल या परसों की बात कर ले तो परसों जो शपथ ग्रहण के बाद कुछ जिलों में थोड़ा मोड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटनाएं नहीं आई।
नहीं, घटनाएं तो नहीं है, लेकिन मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सहाय आपका। कार्यक्रम में एक श्रोता को हम शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं नीतीश कुमार यादव दुलम चौक भोजपुर बिहार से बोल रहा हूँ।
अच्छा, आपका नाम भी नीतीश कुमार है जी, भोजपुर से आप बोल रहे हैं, बात कहें अपनी आप।
नीतीश कुमार जो है सत्ता के लालची हैं, कभी तो बात 6 महीना भी रह नहीं पाते हैं सत्ता से दूर। सीताराम जी को सरकार बना के और फिर आरजेडी के साथ मिलकर के अपने बन गए थे।
तो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता के लालची हैं नीतीश कुमार?
बिल्कुल, हिम्मत है तो जनता के बीच आते चुनाव करवाते हैं, विधानसभा भंग करा के
जनता के बीच आते चुनाव करवाते। बहुत बहुत शुक्रिया, भोजपुर से ये भी नीतीश कुमार थे। मुकेश जी, जनता के बीच में जाने का फैसला क्यों नहीं लिया नीतीश कुमार ने?
इसका जवाब देखिए, अब उसी में है, वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते और उन्होंने ये आखिरी कोशिश भी नहीं की। अगर वो नीतीश कुमार चाहते और ये शर्त रख देते कि या तो मैं हूँ या तेजस्वी हैं, तो लालू यादव को पीछे हटना पड़ता। लेकिन जो लालू यादव की बात पर अगर यकीन करें कि उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब अगर उन्होंने इस्तीफा मांगा ही नहीं और बिना बताए फिर उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ अचानक सब कुछ कर लिया, तो ये स्पष्ट रूप से यही दिखाता है कि वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा करते, चुनाव में जाने की हिम्मत दिखाते, तो शायद उनकी छवि आज एक बहुत उजली होती कि ये।
लेकिन नीतीश कुमार तो वैसे भी बिहार के हीरो के रूप में जाने जाते हैं, भाई विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनकी छवि पर क्या दाग?
ये तो मीडियावी छवि है,
हाँ।
और ये असलियत शायद नहीं है। विकास कितना हुआ है, कितना अपराधों में कमी आई है, ये सारा इसके डाटा हमेशा इनके सामने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं।
एक टिप्पणी पढ़ना चाहूँगा, चंद्र प्रकाश हैं जो कि फेसबुक पर लिख रहे हैं, लालू करें वो सही और नीतीश जो करें गलत, ये बात समझ में नहीं आती, राजनीति इसी का नाम है। उन्होंने दोनों पार्टियों पर एक निशाना साधा और व्यंग किया है।
नहीं, आप देखें ना कि जब मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुना था, तो नीतीश कुमार की टिप्पणी क्या थी? उन्होंने कहा था कि ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है, और उन्होंने अपने को अलग किया था। आज आप उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए फिर से, तो ये तो विशुद्ध अवसरवाद है, इसमें कोई भी नैतिकता नहीं है, जनादेश की का कोई भी एक ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आया, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
लेकिन इसने चीज़ों को दो तरीके से बांट दिया, भ्रष्टाचार और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता पर इस बार भ्रष्टाचार हावी हो गया।
आपने उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ऐसा तो नहीं था कि जब आपने लालू यादव के साथ गठबंधन किया था तब लालू यादव या उनके परिवार की छवि बहुत साफ सुथरी थी, भ्रष्टाचार के आरोप तब भी लग रहे थे, लेकिन आपने उनके साथ गठबंधन बनाया, चुनाव में गए, चुनाव जीता आपने, और अचानक आपको भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा लगने लगा, और उसमें भी आपने आखिरी कोशिश नहीं की, और आप एकदम से गठबंधन तोड़कर उस तरफ चले गए जिसका आपने पूरे पिछले दो साल में जबरदस्त विरोध किया है, संघ मुक्त
उसी के साथ आप चले गए। यहीं पर कार्यक्रम में हमारे साथ दो प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता शामिल हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। अजय आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत गर्म बहस चल रही है, हमारे साथ सामने मुकेश कुमार जी भी मौजूद हैं। क्या नीतीश को जनादेश का सम्मान, इसे आप जनादेश का सम्मान कहेंगे, क्या चुनाव के लिए नहीं जाना चाहिए था?
देखिए, ऐसा है, जनादेश का सम्मान बिल्कुल हुआ है। जनादेश मिला था महागठबंधन की, तीन पार्टियां मिली थी, तीनों पार्टी ने चुनाव में जाने के पहले अपना नेता नीतीश कुमार को डिक्लेयर कर दिया था। बिहार की जनता को यह भरोसा था कि नीतीश के नेतृत्व में ये महागठबंधन अपना काम अच्छे से करेगा। जहां तक रही, अभी आपके साथ वाले बोल रहे थे कि क्या लालू यादव के बारे में पता नहीं था, यहाँ सवाल लालू यादव का नहीं था, ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? यहाँ तो सवाल सरकार, यहाँ सवाल सरकार में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर तेजस्वी यादव का था, लालू यादव का नहीं था। जहां तक रही लालू यादव की बात, हमने राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन जब किया था तो लालू यादव सजा याफ्ता हो चुके थे, कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनका तो प्रश्न ही खत्म है भाई। और इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने 101 कैंडिडेट जो दिए थे उसमें एक भी कैंडिडेट आपराधिक छवि का नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। ये भी हमारे कारण हुआ था क्योंकि हमने ये शर्त रखी थी।
लेकिन लालू यादव तो खुद ही टेंटेड थे, तो उस समय महागठबंधन बना के पहले ही आपने गलती कर दी, बनाना ही नहीं चाहिए।
लालू यादव से मतलब नहीं था, महागठबंधन उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बना था, लेकिन महागठबंधन का ये मतलब नहीं है कि
आज परिस्थितियां इतनी बदल गई अजय आलोक जी कि आपको मतलब नई सत्ता का दामन के सत्ता बचाने के लिए नया दामन साथ में लाना पड़ा, बीजेपी का दामन।
महागठबंधन इसलिए नहीं बना कि लोग भ्रष्टाचार करते रहे और महागठबंधन की सरकार में उस पर आड़ पड़ती रहे, इसलिए महागठबंधन नहीं बना था। अब वो आर और कोई नहीं, नीतीश कुमार डाले।
चलिए मैं आपको अजय आलोक जी रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से जो मनोज झा जी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, और मुझे पता चला है टेलीफोन लाइन थोड़ी सी खराब है। मनोज झा जी, जनादेश का सम्मान नहीं किया नीतीश कुमार ने।
मैं दो चीजें कहना चाहूंगा जी। मैं अजय भाई को सुन रहा था
जी।
मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार का आरोप और एक FIR पॉलिटिकल मोटिव कुछ भी हो, मैं उसमें जाना चाहता, अगर वो एक आधार बन जाए ना तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनके दल के साथ इन्होंने नैसर्गिक रिश्ता बनाया है सब एक्सपोज हो जाएंगे, इसमें नहीं जाना चाहिए। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, हर जनादेश का एक चरित्र होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, उसकी दिशा होती है। मुझे याद है 100 सीटों पर जदयू लड़ रही थी, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहा था, इनके 70 विधायक चिरौड़ी करते थे कि लालू जी की मीटिंग करवा दो हमारे यहाँ, क्यों किसी का सजा का भी नहीं था, फेर पर देश की बातें था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि नीतीश जी को अगर ये निर्णय लेना था, इसके लिए इतना आवरण और पाखंड करने की आवश्यकता।
जी जी अजय आलोक जी, मैं आपको यही पर शामिल कर रहा हूँ, जो आपने टिप्पणी की इसी पर इनकी राय ले लेते हैं।
एक मिनट, मुझे अपनी बात छोटी समय खत्म करने दीजिए
जी।
मैं उस तरह के व्यक्तियों में नहीं हूँ जो किसी पर व्यक्तिगत लांछन लगाए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस पर भ्रष्टाचार का आरोपी कोई है तो जो मानसिक भ्रष्टाचार होता है ना हुजूर, वो रिट्रीव हो सकता है, सजा मिल जाती है। इंसानियत के कातिल और कत्ल करने वालों के साथ अगर आप समझौता करते हैं तो हुजूर इंसानी जान वापस नहीं आती है। आपने मॉब लिंचर के साथ समझौता किया है
जी,
आप बार बार हम कह रहे हैं कि गांधी के हे राम, चंपारण वाले गांधी के हे राम से आपने जाकर के मैंडेट को जय श्री राम की गोद में सौंप दिया।
जी मैं यही पर मनोज झा जी आपकी बात हमने सुन ली, यहीं पर मैं अजय आलोक जी की टिप्पणी ले लेता हूं, फिर आपसे विदा लूंगा। जी अजय आलोक जी, जो मनोज झा जी कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए मनोज जी जो कह रहे हैं वो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता होने के कारण वो वही कहेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल सामने दिखती है। ये कोई रेगुलर FIR थाने में किया हुआ FIR नहीं है, ये CBI का FIR है, और हम लोग सबको ही जानते हैं कि CBI के FIR के पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है और साक्ष्य होने के बाद ही FIR किया जाता है। हम क्या कह रहे थे कि अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का बिंदुवार आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब देने को भी तैयार नहीं है साहब, तो आपकी तरफ से जवाब हम देंगे, आपकी तरफ से नीतीश कुमार जवाब देंगे। और दूसरी बात यह कि पिछले छह महीने से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता लोग, इसको तो मनोज जी मानेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी करते थे, जिस तरह की हरकतें हो रही थी, जिस तरह से लालू जी का फोन हर DM SP हर विभाग के कमिश्नर हर जगह पे जाना शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनने की कोशिश हो रही थी और उससे गलत संदेश जा रहा।
जी मैं बीच में आप दोनों को रोक रहा हूँ, मुकेश कुमार कुछ कहना चाहते हैं।
आलू जी मैं इसके एक दूसरे पक्ष की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, वो ये है कि आप देखें पिछले 2 साल में नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार के बारे में क्या क्या कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या कहा है। सुशील मोदी धोखेबाज बता चुके हैं नीतीश कुमार को, आप उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो भ्रष्टाचार की लिस्ट पढ़ी थी उसमें वो भी आपको याद होगी, आपकी सरकार की अलकतरा घोटाले से लेकर और तमाम तरह के घोटाले। तो ये तो एक अवसरवाद दिख रहा है ना, तेजस्वी यादव ने क्या किया और लालू यादव ने गठबंधन को बचाने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ये एक अलग विषय है, लेकिन आप का ये दोहरापन साफ दिख रहा है।
जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी।
राजनीति में कौन किसके बारे में क्या बोलता है, ये अगर इतिहास आप निकालेंगे तो लालू और नीतीश एक दूसरे के बारे में क्या क्या बोलते रहे हैं ये भी एक अलग विषय था, लेकिन इसके बावजूद भी 2013 में गठबंधन बना। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या बोली, हमने क्या बोला भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये विषय आज के समय में मौजूद नहीं है। बात ये थी, एक लाइन की बात थी कि हमने
जी, जी, मनोज जी कुछ बोलना चाहते हैं।
इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई शर्त समर्थन हमें दे दिया कि हम सरकार।
चलिए ठीक है, आपने समर्थन दे दिया, सरकार बन गई। मनोज जी आपकी आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ, जी आपकी आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ, जी हमारे पास बहुत सारे श्रोता लाइन पे आना चाहते हैं।
मैं बिल्कुल आखिरी टिप्पणी कर रहा हूँ आपसे
जी,
मैं गवाह हूँ व्यक्तिगत रूप से, और ऐसा नहीं है कि मैं नीतीश जी के वर्तन को नहीं जानता हूँ। हमारे दल में जब किसी ने भी नीतीश जी के बारे में कोई टिप्पणी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं, मैं गवाह हूँ, उनको कहा कि अनधिकृत बयान है, मुंह पे ताला जड़ो, हमको ये चलाना है, पूरे देश में ले जाना है। मैं समझता हूँ आज आपने एक रास्ता तय किया अलग, लेकिन इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि अपने अलग रास्ते को लेकर के जो सच है वो सामने रखें दुनिया के।
अलग रास्ते को लेकर
तेजस्वी का इस्तीफा बिल्कुल इशू नहीं था, इशू ये था कि आपने भाजपाई संघीय नैरेटिव के पक्ष में जाने का निर्णय किया और उस मैंडेट का जिसमें दलित महादलित पिछड़े तंत्र पिछड़े अकलियत और प्रगतिशील समन्वय समाज, आपने उन सबके मैंडेट को नागपुर के जय श्री राम वाले गोद में जाके डाल दिया
जी। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे श्रोता लाइन पर हैं। अजय आलोक जी आपका भी शुक्रिया और मनोज झा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में यहाँ पर मैं एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ और पूछते हैं कि ये जनमंच है, श्रोताओं की आवाज़ बहुत ज़रूरी है, तो कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर लेता हूँ। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो सर।
जी हाँ नाम बताएं।
मेरा नाम सचिन कुमार तिवारी है।
सचिन जी हाँ,
पोस्ट दरअसल डिस्ट्रिक्ट सिवान से बोल रहा हूँ। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी में LSW का स्टूडेंट हूँ।
जी हाँ।
आज कभी लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी पढ़े हुए हैं। जो CBI केस तेजस्वी पे है, ये किसी और मंत्री पे नहीं था। नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं लेते तो क्या करते? उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि बिहार में जितना चारा था वो तो लालू यादव खा गए हैं। और दूसरा है कि बिहार में की जनता नीतीश जी को भी चारा चोर कहने लगती है अगर उनका साथ देते तो।
जी मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं सचिन जी। लेकिन आप देखिए कि अगर मैंने जो अभी कहा था कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो तेजस्वी यादव सरकार के बाहर होते, अगर वो ये शर्त रख देते कि या तो मैं या तेजस्वी, वो इस चीज़ को इस स्तर तक नहीं ले गए। यानी पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही थी BJP के साथ, मोदी जी के साथ, और उसके लिए एक समय आ गया था जब वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे, या कोई उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, उनकी कोई नस भी दबा रखी हो सकती है मोदी सरकार ने, जिसकी वजह से उन्होंने आनन फानन में इसको इशू बनाया और BJP का दामन थाम लिया।
लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई राजनीति में तो ये होता रहता है, चेहरे बदलते रहते हैं, सत्ताएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं।
लेकिन ये प्रश्न तो आप उठाएंगे क्योंकि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, आप बेहतर राजनीति की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि बेहतर राजनीति सुधरे ताकि दूसरी चीज़ें भी सुधरें, तो ये सवाल तो हमेशा मौजूद रहेंगे।
कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल करने का वक्त नहीं है। गौतम पाल की एक टिप्पणी लेना चाहता हूँ। इस घटनाक्रम को दो ढंग से देखने की ज़रूरत है। संविधान के नियमों को देखा जाए तो हर चीज़ ठीक ठाक लगती है, क्योंकि सारे नियम कानून को ठीक से दुरुस्त करके काम किया गया है। नैतिक पहलू से देखा जाए तो
नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन
अच्छा, बहरहाल जो इन्होंने टिप्पणी दी है गौतम पाल जी, ये कह रहे हैं और नैतिक पहलू से देखा जाए तो ऐसा कोई काम नहीं दिखता जिसे सही कहा जाए, और बात नैतिक पहलू को की होनी ज़्यादा ज़रूरी है।
जी, तो नैतिक पहलू के बारे में तो उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी। देखिए, केसरीनाथ जी ने एक मौका भी नहीं दिया राष्ट्रीय जनता दल को, सबसे बड़ा दल होने के नाते पहला मौका उसे मिलना चाहिए था, उसको समय भी दिया 11 बजे।
राज्यपाल की विवेक शक्ति है, ये तो राज्यपाल की विवेक शक्ति है, संविधान प्रदत्त है जो कि।
लेकिन ये भी तो देखेंगे ना, जो बुम्बई सर केस है, मामला उसमें जो कुछ कहा गया है उसका भी तो ध्यान रखेगा ना राज्यपाल, वो नहीं रखा गया, तो वहाँ भी एक आपको देखने को मिलेगा कि राज्यपाल के स्तर पर भी एक जो नैतिक और जो संवैधानिक जो उम्मीद की जाती है,
उम्मीद है,
उसमें कहीं घालमेल हुआ है।
लेकिन जो मूल प्रश्न आज हम जिस पे चर्चा कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को इलेक्शन में उतरते लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, तो भाई नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या था?
ये तो बहानेबाजी है। देखिए, जब हमें नहीं जाना होता है चुनाव में तो हम चुनाव थोपना नहीं चाहते हैं, और जब हमें लगता है कि इस चुनाव में जाने से हमें फ़ायदा होगा तो नया जनादेश की ज़रूरत पड़ गई थी इसलिए हम चुनाव करवा रहे हैं।
मतलब ये उसी तरह की बात हो गई कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं तो समय पूर्व उन्होंने चुनाव की घोषणा करवा दी, आप ये कह रहे हैं?
बिल्कुल, ये सुविधा का मामला है विशुद्ध रूप से।
आगे आने वाले समय में राजनीति क्या देखते हैं अब? मतलब क्या अब दरवाजे बंद लालू के लिए?
फिलहाल तो यही है,
लेकिन ऐसा पहले भी लगा था, पहले भी लगा था जब नीतीश और लालू साथ में आए थे।
यही देखना है कि जो नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ इस हद तक चले गए थे, आज एक इस क्या वो इतने बौने होकर उस पार्टी के साथ शासन कर पाएंगे? और जो पार्टी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है और बहुत मजबूत हो चुकी है, वो अगर एग्रेसिव होकर बिहार में अपनी कैंपेन चलाएगी, गौरक्षा और वगैरह वगैरह के इशू उठाएगी, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे?
लेकिन फिलहाल तो यही है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, वो धर्मनिरपेक्षता का जो पुराना मुद्दा था, उस पर भारी पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार जी। कार्यक्रम में उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया जो कि हिस्सा ले पाए, उनसे माफी जो कि शामिल नहीं हो पाए। अगले कार्यक्रम यानी कि सुबह नमस्कार भारत में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को दीपक जसरोठियो के साथ विदा दें। नमस्कार।